Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन आश्चर्य की घटना घटी वहां. भरद्वाज ऋषि के आश्रम में सारी सुख सुविधा की चीजें थी. उन्होंने सोचा कि भगवान राम के भ्राता भरत अयोध्या के राजा बने, अब तो और कोई दूसरा नहीं, यही राजा है, और इनका मैं सम्मान करता हूं, राजा की तरह सम्मान, प्रभु प्रसन्न होंगे. और जो उन्होंने सुविधा दी वहां, जो वर्णन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. तो उस समय ऐसा सुख भोग हो सकता है, ऐसा वर्णन है वहां. वह अनेकों प्रकार के भोजन के भंडार लगे हुए थे और अनेकों माताएं भोजन करा रही थी. एक एक व्यक्ति को चार चार पांच पांच लोग मिलकर नला रहे थे, वहां मालिश करके नला रहे थे लोग. क्या आनंद, क्या उत्सव, गाजे बाजे, बहुत सुंदर सुंदर नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, लोग गा रहे हैं. तो ऐश्वर्य देखकर कई लोग क्या सोच रहे थे मालूम है? वो सोच रहे थे कि अरे ये तो अयोध्या में भी ऐसा आनंद नहीं है. भगवान श्री राम को लेने के लिए वहां जा रहे हैं, वन में कितना अच्छा है, हम यहीं रह जाए, इतना आनंद तो कहीं नहीं है. इसलिए कई लोग विचार कर रहे थे कि अब आगे नहीं बढ़ेंगे, हम यहीं रहे, ये तो खतरे हैं, यही से तो बचना है, अपने को यही तो बचना है. एक कोई गुरु थे और उन्हें घोषणा कर दी कि भैया एक 10 किलोमीटर दूरी पर कोई एक चीज रखी हुई है और उस चीज को आप जितना जल्दी यहां ले आओगे मेरे पास, उसको मैं महंत बना दूंगा, अपने गद्दी पर बिठा दूंगा. और पुराने जमाने में महात्मा की गद्दी पर सभी लोग नहीं बैठते थे, उसकी योग्यता का आदमी खोजा जाता था. उस गद्दी पर, उस गुरु की गद्दी पर कौन बैठेगा? अरे बहुत बड़ा त्यागी होगा, तत्व साक्षात्कारी, समाधि संपन्न व्यक्ति होगा, वो बैठेगा कि ऐसी कोई भी बैठेगा? महात्मा ने कहा कि परीक्षा है, बस 10 किलोमीटर दूरी पर वो चीज रखी है और वो चीज ले आना है, और जो सबसे पहले लाएगा वो मेरे गद्दी का उत्तराधिकारी. बहुत सारे शिष्य थे महात्मा के, लेकिन महात्मा जी ने बहुत सी वहां पर चीजें रखी थी. उस रास्ते में बहुत सारी चीजें थी, बढ़िया बढ़िया भोजन, नृत्य गान, व्यवस्था, आराम, बहुत सारी चीजें रास्ते में थी. और जैसे ही लोग निकले वहां से, सबसे पहले उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिला. कुछ लोगों ने सोचा कि चलो पहले भोजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलते हैं. कुछ लोगों ने कहा छोड़ो भोजन, अरे अपने को तो वहां गुरु की गद्दी वो पाना है, गुरु को पाना है, गुरु के स्थान को पाना है, छोड़ा भोजन, छोड़ दिया. बहुत सारे लोग भोजन करने में लग गए, अरे वो तो स्वादिष्ट भोजन था, खाने में लग गए. पहले लगा कि थोड़ा कम खा लेते हैं और खाते खाते आदमी का मन बहुत बेवकूफ बनाता है. आदमी सोचता है चलो खा ले, और एक खा लेते, और एक खा लेते. और कई लोग निकले नारायण और आगे जाके बहुत आराम की चीजें थी, गद्दे बिछे थे, पंखा लोग झेल रहे थे, आहा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी. कुछ लोगों ने कहा चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर दौड़ लगाएंगे, और ऐसी दौड़ लगाएंगे सबको पीछे कर देंगे. बहुत से लोगों ने कहा नहीं नहीं यहां नहीं रुकना है, चलो आगे बढ़ो, निकल पड़े. और अंत में कितने लोग पहुंचे होंगे? फिर एक आता आदमी भोग में भटकता है, आदमी भोग में अटकता है. सबसे अध्यात्म की साधना में यही तो बाधा है. अध्यात्म की सबसे बड़ी बाधा तो यही है, आदमी अटक जाता है. कहीं ना कहीं आदमी अटक जाता है, भोग वृत्ति हमें अटका देती है. हम कहीं ना कहीं अटक जाते, चिपक जाते हैं और सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं। इसलिए बालक नचिकेता के सामने आचार्य यम ने कहा, श्रेयो ही धीरो अभी प्रेयसो वृणीते। जो धीर व्यक्ति होता है, जो निराशक्त व्यक्ति होता है, जो भय और प्रलोभनों से अपने मन को अलग रखता है, बोले श्रेय, वो श्रेय को प्राप्त करता है, वो रास्ते में अटकता नहीं है। और प्रेयो मंदो योगक्षेमात् प्रणीते। जो आदमी मंद है, मंद मति मंद, वो आदमी क्या करता है, बोले योगक्षेमात्, उसको चिंता, योगक्षेम की चिंता है। आम आदमी को योगक्षेम की चिंता है। मैंने आपको कल कहा था, लगता है बहुत से लोगों को लगता है कि हम जाएं और साधना करें, हम वृंदावन में आए साधना करें, लेकिन वहां पर भी आदमी को लगता है कि वहां भोजन मिलेगा कि नहीं। एक माता कोई बोली कि मैं वृंदावन में महीना भर रहना चाहती हूं, भजन करना चाहती हूं, लेकिन वहां मेरे अनुकूल भोजन मिलेगा कि नहीं। उन्होंने तो ये पूछा कि महाराज वहां आचार अरे बोले उसकी चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी आचार। चिंता योगक्षेम। आदमी कहां चटनी में अटक गया। आदमी को अटकने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज की जरूरत नहीं है। आदमी चटनी में अटक जाता है, अचार में अटक जाता है, एक फुलके में अटक जाता है, थोड़ी सब्जी में अटक जाता है। हम कहां अटकते हैं? हमें अटकने के लिए, पुराने जमाने के लोगों को अटकाने के लिए इंद्र को बहुत सारे प्रलोभन भेजने पड़ते थे। आपने शास्त्रों में सुना ना, बहुत जगह पर सुना होगा, देवता लोग प्रतिबंधक उपस्थित करने के लिए अप्सराएं भेजा करते थे, बहुत सारे प्रतिबंध भेजे जाते थे, बहुत सारे भय पैदा किए जाते थे। लेकिन आज हम इतने डरे हुए हैं, हमें बहुत बड़े भय की जरूरत ही नहीं है, हमें बहुत बड़े प्रलोभनों की जरूरत ही नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं। आपको भी ध्यान देना, सुबह से शाम तक हम कहां अटकते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों में अटकते हैं। हम आपस में झगड़े भी करते तो कितनी बड़ी चीजों में अटकते, अखबार के लिए झगड़ा करता है आदमी, करता है कि नहीं, टीवी के चैनल में झगड़ा करता है, खाने पीने में झगड़ा करता है, वो बना वो नहीं बना, वो खाना नहीं वो नहीं खा, इतनी छोटी छोटी चीजों में अटकता है। और इन छोटी मोटी चीजों में ही यदि हम अटक पड़े तो हम उस सत्य से साक्षात्कार कैसे कर पाए। योगक्षेमात्। एक कोई व्यक्ति घाटकोपर में रहे, उनके बच्चे मेरे पास आए, बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। उन्होंने आके मेरे से प्रार्थना की, महाराज आप यहां घाटकोपर आ चुके, प्रवचन कर रहे हैं, और आप हमारे पिताजी को समझा दीजिए, हम बहुत परेशान हैं। और ये बार बार कहते हैं कि वृंदावन चले जाएंगे, संन्यास लेंगे, और उन्हें अभी कहना शुरू कर दिया कि स्वामी जी आ गए हैं वृंदावन से, और अब तो मैं स्वामी जी के साथ चला जाऊंगा, आप समझा दीजिए। हम परेशान रहते हैं, उनकी वहां व्यवस्था कौन करेगा, बीमार होंगे तो संभालेगा कौन। मैंने कहा अब चिंता मत करो, तो आप दोबारा जब वो सन्यास की बात करें तो आप बोल देना, हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में एक सन्यासी बन रहा है, और आप आराम से आप जाइए सन्यास लीजिए, और आपके सन्यास में हम सबकी सद्भावना है। बच्चों ने कहा, महाराज जो सचमुच निकल गए तो क्या होगा, आप तो और गड़बड़ करने वाले हैं। बोले आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा चिंता मत करो, तुम एक बार बोल देना, सब लोग मिलके बोल देना, कोई पक्ष नहीं लेना उनका। ऐसी हुआ, किसी बात पर नाराज हो गए हो, अपना झोला उठाया, वही स्टाइल हमेशा की, झोला उठाया और उठा के बोले कि अब तो मैं जा रहा हूं, अब वापस कभी नहीं आऊंगा। स्वामी जी आ गए, अब संन्यास लूंगा मैं। अब सब लोग तैयार थे, सब लोगों ने इशारा कर दिया, बोले नमो नमः, बहुत अच्छी बात, धन्य हो गया हमारा मिश्रा परिवार, आप संन्यास ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उन्होंने घूर के देखा सबको, सबको घूर के देखा और थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाया। उनको लगा कि लोग आज रोक नहीं रहे, बात क्या है, आज रोक नहीं रहे, बात क्या है, हमेशा तो रोकते थे, आज कोई रोक नहीं रहा। बोले सचमुच जा रहा हूं। तुम मजाक मत समझना, बोले सचमुच जा रहा हूं, अब लौटूंगा नहीं। लोगों ने कहा जाइए आप, आनंद की बात है, आप बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। वो लिफ्ट तक गए, फिर घूम के देखा कि कोई आ रहा है कि नहीं, कोई रोक रहा है कि नहीं। और उनको मालूम पड़ा कि कोई नहीं रोक रहा है। वापस लौटे और झोला रखते हुए उन्होंने कहा कि संन्यास मैं नहीं लूंगा। बोले संन्यास तुम लोग लो, तुम लोग सोचते होंगे कि मैं चला जाऊंगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, जो चाहे मन में वो करोगे। बोले संन्यास मैं नहीं, संन्यास तुमको दूंगा। वो उसके बाद फिर उन्होंने कभी नहीं बोला मैं संन्यास लूंगा। दिलीप भाई कभी कभी आप भी धमका देते होंगे घर में, हा? लेकिन अपने को मालूम है कि रोकेंगे ये लोग। आप कभी बच्चों को बोलना, आप अपने पोता पोती को बोलना या हम हरिद्वार चले जाएंगे तो वो बोला, पोता बोलेगा नहीं दादा मत जाओ, तो आपको बहुत खुशी होती है, हाँ देखो ये मेरे को मना कर रहा, यदि मना न करे चले जाओ बोल दो, आप दुखी हो जाओगे। आप माने आप चाहते हैं कि आपको कोई रोकने वाला हो, आप चाहते हैं रोकने वाला हो, इसीलिए आप जा नहीं पाते। आप जाना ही कहां चाहते हैं, यही तो योगक्षेम की चिंता है। वहां जाने के बाद कैसा होगा क्या होगा, लेकिन आप प्रह्लाद ध्रुव बड़े से बड़े लोग हैं, आचार्य शंकर आदि महान साधकों को देखना, वहां योगक्षेम की कोई चिंता नहीं है, वहां रहने खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, वहां वस्त्र की कोई चिंता नहीं है, केवल एक परमात्मा का चिंतन है, उसके सामने सारी चीजें गौण है। उनके लिए सबसे बड़ी बात है साधना, परमात्मा का भजन चिंतन, बाकी सारी चीजें गौण है। मिले तो भी ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने घोषणा भी कर दी, प्राप्तेन संतुष्यता, जो प्राप्त है। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष वृंदावन में, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बड़े महापुरुष थे, भगवान के परम भक्त, ऐसा वैराग्य नारायण, दो घर भिक्षा ली खाए, आनंद मनाए, भगवान का भजन करे, एक बार के बाद भगवान को भोग लगाते थे वो, और बड़े मजेदार ढंग से भोग लगाते थे, वो भिक्षा ले आते थे। ये भिक्षा का अन्न साधक के लिए बहुत उच्चतम माना है, बहुत पवित्र माना गया। हम लोगों ने भी बहुत भिक्षा ली, और आप भिक्षा लेते तो क्या सभी लोग बहुत आदर से भिक्षा देते हैं? अरे बहुत सारे लोग तो गाली गलौज करते हैं। एक बार हम लोग भिक्षा के लिए गए, देवप्रयाग में थे हम लोग, कैलाश के पूज्य आदरणीय महामंडलेश्वर जी महाराज, दीवानी जी महाराज जी के साथ थे, हम उनसे पढ़े भी हैं, हमारे गुरुदेव हैं। 40 महात्मा थे, वो पढ़ाते थे, जंगल में रहने का भी कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं था, झोपड़ा झोपड़ा जैसा था। हम दो साधु भिक्षा लेने के लिए गए, और जैसे ही वहां पर नारायण हरि बोला, वहां कुछ माताएं बैठी थी, हमको क्या मालूम क्या उनका टेंशन रहा होगा, और जैसे ही नारायण हरि बोला, माताओं ने बोला लो बोले, ये घर में काम धंधा नहीं करना था, माता पिता की सेवा नहीं करनी थी, आई आलसी कायर, और ये बोले नारायण हरि, इनको भिक्षा चाहिए। अरे जो गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे साथ जो साधु था ना, उसने मेरे को इशारा किया, बोले चलो जल्दी चलो यहां से, हमें बोले गाली दे रहे जल्दी चलो। हमने कहा नहीं जा सकते, हमारे भिक्षुओं का एक नियम है, तीन बार बोलना पड़ता है तब वापस हो सकते हैं आप। पहली बार नारायण हरि बोल दीजिए, आपने बोला उसने सुना कि नहीं सुना मालूम नहीं। और एक भिक्षु का एक गृहस्थ आदमी के घर से वापस लौटना अच्छी बात नहीं है। आपने एक बार बोला और वापस हो गए, आप अपराधी बने। उसने सुना ना हो, घर के काम में लगा होगा, आप दोबारा बोल दीजिए। हमने कहा नियम है हमारा, नहीं जा सकते। अरे बोले वो मारेगी ये महिला मंडल है, सावधान। हमने कहा कोई बात नहीं। दूसरी बार हमने बोला नारायण हरि, और वो तो और गाली देना शुरू कर दे। वो बोले निर्लज्ज हो कहेंगे, फिर नारायण हरि। अब वो मैं साधु मेरे को पकड़ के पीछे खींच रहे थे। अरे बोले चलो यहां जल्दी चलो। हमने कहा कहां से चले, तीसरी बार बोलना होता है। तीसरी बार बोलने का अर्थ है हम जा रहे हैं, अब निश्चिंत हुए। अब तीसरी बार बोलने का अर्थ है कि उस आदमी को भी मालूम है, द्वार पर आया हुआ भिक्षु चला गया। अरे बोले तुम मरवाओगे हमको, वो साधु नए थे। हमने तीसरी बार बोला नारायण हरि, और वो माताएं सचमुच छूट के खड़ी हो गई। हमने कहा अब भाग सकते हो तुम, भागो। हमने कहा अब भागो। महात्मा बोला भैया तुम्हारे साथ में दोबारा भिक्षा नहीं आऊंगा। हमने कहा नियम है, भले ही वो मारे, लेकिन आपका नियम है कि नहीं? आपने एक बार बोला और उसने गाली देनी शुरू कर दी, तो और आप भागे तो आप अपराधी बनेंगे। भिक्षुक वृत्ति का आप त्याग कर दिए ना, आप दोबारा बोल दीजिए, थोड़ा जल्दी बोल दीजिए। और तीसरी बार बोलने के बाद फिर आपको रुकना नहीं, वहां से चले जाना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भिक्षा लेके खाते थे। गए दो घर मांगा, और नारायण वो क्या करते थे, भिक्षा को पानी में डुबो लेते थे। जैसे वस्त्र में भिक्षा आई, वैसे मुनाजी के जल में दो चार दस बार यूं, माने उसके अंदर का तेल, नमक, मिर्ची, अरे जो भी था वो बह जाए, और केवल जो भी बचा योगक्षेम करना है, भोग वृत्ति का नाश करना है, योग वृत्ति को निर्मित करना है, आत्मसंयम निर्मित करना है, स्वाद से मन को परे ले जाना है, अटकना नहीं भोजन में, केवल शरीर के निर्वाह के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए भोजन करना है। इस प्रकार भोजन किया करते थे, और वही भगवान को भी भोग लगाते थे। वही भिक्षा ही ठाकुर जी के सामने रखा, तुलसी पत्र रखा, और बस भगवान को भोग करना। भगवान को भी वही खाना पड़ता था। एक दिन भगवान ने रूप गोस्वामी को बोला कि भैया, बोले अरे थोड़ा नमक तो रखा करो। ये भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या भोग लगाते हो, पानी में दो दो करके भोग लगाते। बोले अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ थोड़ा नमक डाला करो। बोले नमक अच्छा नहीं लगता है। लेकिन गोस्वामी जी ने उत्तर क्या दिया मालूम है? गोस्वामी जी ने कहा कि तुम बहुत चटोरे मालूम पड़ते हो, और तुमको मालूम है मैं तो विरक्त साधु हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक वस्त्र है मेरे कुटिया में, और कुछ नहीं, और तुम्हारे नमक मिर्ची की व्यवस्था करूं तो और मेरा भजन छूट जाएगा। आज ठाकुर जी को बोल रहे थे हो। बोले मैं अपनी साधना, अपना भजन, अपना वैराग्य छोड़कर क्या तुम्हारी नमक मिर्ची की व्यवस्था करूं? बोले मेरे से संभव नहीं है। मानो भगवान ने परीक्षा ली हो। आदमी अपनी ही आसक्तियों को आगे बढ़ाता है बहाना बना के। हम लोग भोजन बनाते हैं सचमुच अपने स्वाद के लिए कि भगवान के स्वाद के लिए? वो मेनू हमारा होता है, वो हमारा मन होता है। आदमी को खाना होता है तो भगवान को भोग लगा के खाता है। महाराज श्री के पास एक व्यक्ति थे, कोई ब्रह्मचारी थे। डॉक्टर ने बोला कि तुमको मिर्ची नहीं खाना है, उन्होंने मिर्ची छोड़ दी। डॉक्टर के पास गए दोबारा, डॉक्टर ने देखा, अरे बोले तुम्हारा रोग ठीक नहीं हो रहा है, तुमने मिर्ची छोड़ी कि नहीं? बोले मिर्ची तो छोड़ दी। डॉक्टर ने कहा फिर ये क्या हो रहा है? उसके साथ जो जाता था व्यक्ति, उसने कहा कि ये मिर्ची छोड़ा नहीं इसने, ये झूठ बोल रहा है। ये तो प्रतिदिन मिर्ची खाता है। बोले और ज्यादा खाता है, हरी मिर्ची खाता है, बहुत तीखी खाता है। डॉक्टर ने बोला आप झूठ क्यों बोला? अरे बोले मिर्ची नहीं खाता हूं, बोले वो प्रसाद खाता हूं मैं। अब वो भगवान को भोग लगा के खाने लगे वो, और वो मन को भ्रमा रहे थे। हम अपने ही आसक्तियों को नारायण आगे बढ़ाते हैं, हम अपने स्वाद के अनुसार भोजन बनाते हैं, और हमारे मन में भाव होता है कि हम भगवान का भोग खा रहे हैं। वस्तुतः तो भगवान का भोग है कि हमारे मन का भोग है। हम अपने स्वाद की चीजें बना लेते हैं, वो अच्छी बात है, भगवान को भोग लगा देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया ये संभव नहीं है, मैं भजन साधना ये सब कुछ छोड़कर आपके भोजन की व्यवस्था में लग जाओ, आपके नमक मिर्ची की व्यवस्था करो तो पूरा आश्रम खड़ा हो जाए। हां मैं एक व्यवस्था कर सकता हूं। बोले आपको 56 प्रकार का भोग करना है, खाना है, तो मैं आपको भेज देता हूं मधु बाबू के घर में। बोले किसी सेठ के घर में तुमको भेज देता हूं कल से, और मैं अपना विरक्त भाव से तुम्हारा भजन करूंगा। तुम तो सब जगह पर हो, यहीं से तुमको नमस्कार करूंगा, तुम आनंद मनाओ किसी सेठ के घर में बढ़िया बढ़िया भोजन का। हम यहां भिक्षा खा लेंगे, तुम्हारा भजन कर लेंगे, कल तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तो भगवान ने क्या बोला होगा? भगवान ने बोला कि तुम मत भेजना हमको, हम यही खा लेंगे जो तुम जो भोग लगाओगे, बोले वही खा लेंगे, हमको कहीं मत भेजना। सचमुच यदि आपको साधना करना है, सचमुच सत्य का साक्षात्कार करना है, जीवन में परिवर्तन लाना है, स्वभाव में परिवर्तन लाना है, विचारों में परिवर्तन लाना है, तो हमें धीरे धीरे कुछ छोड़ना सीखना पड़ेगा, छोड़ने की आदत रखनी पड़ेगी। विचारों का आग्रह, दुराग्रह, बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में मालूम पड़े ये दुर्गुण है, उसको अविलंब त्याग करते जाना है, और जो योगक्षेम की चिंता हमारे मन में है उसका भी त्याग करना चाहिए। कल क्या होगा, हमारी बहुत ज्यादा व्यवस्था होगी कि नहीं, व्यवस्था के जुटाने के चक्कर में तो हमारा बहुत अमूल्य समय व्यतीत हो जाता है, सुबह से शाम तक समय व्यर्थ के कामों में चला जाता है, और इसलिए हम बहुत गहरी साधना नहीं कर पाते हैं। इसलिए मंद मतिमंद जो आदमी है, आचार्य यम ने कहा वो योगक्षेमा, तो खाने पीने के चक्कर में, बहुत छोटी छोटी चीजों के चक्कर में, बोले प्रेयो वृणीते, वो प्रेय मार्ग का ही अनुकरण करता है, मैंने माला छोड़ के सो जाता है। समझ में आया कि नहीं? भजन छोड़ के भोजन में लगा रहता है, अपना अमूल्य जो समय है वो अमूल्य समय बहुत छोटी छोटी चीजों में ही व्यर्थ का गमा देता है। और ये बहुत गहरी बात है, और हमारे दैनिक जीवन की भी बात है। आप माला लेके बैठे हैं और उस समय अपने को क्या लगता है? भूख सी लगती है। प्रभु जी महाराज श्री एक बड़ी गहरी बात बोली, पावन प्रसंग में भी शायद ये बात आई हो। एक बार महाराज श्री गए गंगा के किनारे साधना के लिए, साधना में लगे रहे। अचानक महाराज जी को अपने घर की बात याद आने लगी, मां याद करने लगे, पिताजी याद आने लगे, घर के बहुत सारे लोग याद आने लगे, और महाराज श्री को ऐसा लगने लगा कि मेरी मां तो क्षण क्षण मेरे को याद कर रहे। आहा हा, कितना प्रेम है मां का, कितना प्रेम है मेरे प्रति। अब वो हाथ में माला पूरी न हो, जो जप कर रहे हैं वो पूरा न हो, सारा मन उसी में लगा रहे, और माला भी भूल जाए मां के ध्यान में, घर के चिंतन में। महाराज ने सोचा कि चलो अब छोड़ देते हैं और घर चले जाते। जैसे माला लेके बैठे घर याद आए, घर वाले ऐसा लगे कि बहुत प्रेम कर रहे हैं, बहुत याद आने रहे। महाराज जी ने बहुत मजेदार ढंग से लिखा, महाराज जी ने कहा कि मैं घर गया और जैसे द्वार पर गया, मां ने कहा बेटा बहुत अच्छा हो गया, आ गए तुम, बताओ किस यजमान के घर में गए थे और किस यजमान ने तुमको क्या दक्षिणा दी, और हम सोच रहे थे कि तुम यजमानी में गए होंगे और तुम बहुत सारा खाना खाने पीने का सामान ला रहे होंगे, दक्षिणा ला रहे होंगे। महाराज जी ने लिखा है, उसी समय मेरे को लगा, मैं सोच रहा था कि मेरे को प्रेम करते हैं, मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन ये तो खाने पीने बाहर के पदार्थों से प्रेम करने वाले। और उस समय महाराज जी को लगा कि मैं अपना भजन छोड़ के यहां क्यों आया हूं। ऐसा ही हमारा मन हमको ही धोखा देता है, हमारा मन हमको ही धोखा देता है। आप ध्यान करने के लिए बैठो, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे सारे लोग हमको याद कर रहे हैं, सही रूप से याद, कोई किसी को याद नहीं करता है। और सचमुच ना रहा है, अंतिम जो सत्य है आप हैं मधु बाबू, अंतिम जो सत्य है ना आप है, आप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। आपसे लोग कितना भी प्रेम करें, अंतिम जो दुख है वो आपको ही सहन करना पड़ेगा। आपके घुटने का दर्द आपका कितना भी प्रिय आदमी हो वो नहीं लेगा, लेने की कोई सुविधा भी नहीं है। अंतिम सत्य हम हैं। इसीलिए आज बालक नचिकेता के लिए यही कहने, योग क्षेम माने आत्मा को छोड़ के, परमात्मा को छोड़ के दुनिया की सारी चीजें हैं और उन्हीं में हम उलझे रहते हैं, मंद मंद बुद्धि बनकर। लेकिन जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सारी चीजों का त्याग कर एक आत्मसत्ता में स्थिर होने का प्रयत्न करता है। बड़ा सुंदर प्रकरण है, आज यही पर विराम, अभी आप सीधे बैठ जाएंगे 2 मिनट के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।